आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आ गए, गलती से फल खा लिया, इब्लीस ने दुश्मनी का हक अदा कर दिया। अब क्या हुआ, अगला हिस्सा सुनिए आयत नंबर 38 से। कुल नहबितु मिन्हा जमीया, हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो इसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं, और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुटलाएं वो जहन्नमी हैं और हमेशा इसी में रहेंगे। तो नोट कीजिए आयत 30 से 39 में इंसान का पहला एजाज इल्म, वल्लम आदम अलस्मा कुल्लाहा, इल्म इंसान को जहालत में भटकने से बचा लेता है। अल्लाह आपको मुझे इसकी तौफीक दे। और दुनिया की तरफ इंसान का सफ़र शुरू हो गया। आदम पैदा किए गए थे ज़मीन के लिए, बीच में जन्नत दिखा दी, जहन्नम दिखा दी, क्यों कि चलो देख लो अच्छे और बुरे अंजाम के बाद ये मंजिलें होंगी। अब यहाँ से आगे बनी इसराइल से खिताब है, वही इलाही का दुनिया में जारी होना, 10 रुकू तकरीबन हम बनी इसराइल की तलिए पढ़ेंगे। कौन थे? माजी के मुसलमान थे। कुरान तो मेरी आपकी किताब है, उनका किस्सा क्यों? अल्लाह आज के मुसलमानों को बता रहा है कि माजी के मुसलमानों को क्या खुशफहमियाँ हुई, तुम उसका शिकार ना होना, उनको क्या गलत फहमियाँ हुई, तुम उसका शिकार ना होना, और उनका क्या अंजाम हुआ, तुम उस बुरे अंजाम से बचो। अब आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं एल्बम के सफ़े पलट रही हूँ। आपको स्लाइड्स अच्छी लग रही हैं, किताब पलटती हुई अच्छी लगती है। अल्लाह बरकत दे, देखे दुआ दिया करे इन सारी चीज़ों को। ये भी सारा दीन का प्यार और मोहब्बत है, कितनी मेहनत से ये काम होता है, और जो लोग भी इसमें काम करते हैं अल्लाह ताला उनको मजीद बरकतें अता फरमाए। तो आइए ज़रा यहाँ से मैं ना तर्जमा पढ़ पढ़ कर आपको थोड़ा सा इसके साथ लेके चलूंगी। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनंतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझसे ही डरो और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इस किताब के साथ तुम पहले ही काफिर ना बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर फरोख्त ना करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो, और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है, और नमाजों को कायम करो, और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो? बावजूद इसके कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और सब्र और नमाज के सब मदद तलब करो। ये चीज शाक है यानी मुश्किल लगती है, मगर डर रखने वालों पर वो कौन होते हैं खाशेन, जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। एक और कैटेगरी आ गई खाशेन की। कुरान से ये सारी कैटेगरीज जमा करें ताकि आपको अमल के नुक्ते मिलते जाएं कि हमने क्या करने हैं। तो यहाँ आयत 46 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रुख पूरा हुआ, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह की बिनेमती ही ततिमु सालेहात। आपको यहाँ बैठकर अपने प्यारे याद आ रहे हैं, फुलां भी आए फुलां भी आए फुलां भी सुने फुलां भी सुने, तो अपनी प्योर फीलिंग्स उनको बताइएगा। आपको लग नहीं रहा कि कुरान पाक यहाँ नाजिल हो रहा है? कैसे कुरान पाक की आयतों को खोल के पढ़ना हमें अल्लाह ताला के करीब कर देता है। अब आगे यहाँ से दोबारा या बनी इसराइल कहकर अल्लाह ताला ने पुकारा, 3 दफ़ा आप देखेंगे इस बारे में या बनी इसराइल है। यहाँ से सोचिए अल्लाह ताला को कितना ज्यादा प्यार था उस कौम से, लेकिन जब वो बेअमल हुई तो उनको अल्लाह ताला ने मगदूब और दालिन के कैटेगरी में शामिल किया। आज उम्मत मोहम्मदी अल्लाह को बड़ी प्यारी है, उम्मत मुस्लिमा की बड़ी खास शान है, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। लेकिन खुशफहमियों में मत रहिएगा, इन सारी आयतों को पढ़ते हुए सोचिए कि अगर कुरान पाक के बाद कोई और किताब नाजिल हो रही होती तो हमारा तस्करा वहां कैसे होता, हमारी जो उसमें गलत फहमी और चीजें आनी थी, और जो हम लोग दीन और दुनिया के मामले में आज खोटे हो गए दो रुखे हो गए, ये फर्क तो हम महसूस कर सकते हैं। दुनिया में निकल कर देखिए कि आज हम किस तरह की हमारी गवाहियां पैदा हो रही हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपना मुहासबा करते हुए सुने। ए औलादे याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना देगा, सोचिए, और न शिफात और सिफारिश कबूल होगी, और ना कोई बदला इसके इवज लिया जाएगा, और न वो मदद किए जाएंगे। ऐसा लगता है हड़ताल का दिन है। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन नफ्सन शैया, आज दुनिया में जो मेहनत कर सकते हैं कर ले, जो कोशिश कर सकते हैं वो कर ले। देखिए 38 से 48 पे तदब्बुर और अमल, अमल के नुक्ते। नंबर एक, अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी का अमली इजहार करना है। बाजमात नमाज का एहतमाम करना है और निज़ाम कायम करना है। बुरे कामों पर भी अपना मुहासबा करना है और दूसरों को भी उससे रोकना है। इसी तरह से कुरान पाक से रहनुमाई, हिदायत पर चलना दुनिया और आखिरत में तंगी और खौफ से निजात का जरिए, इसकी कोशिश करते रहना। दीन का इल्म सिर्फ दुनिया के मालो मता के लिए हासिल नहीं करना। कई लोग आज पता है आपको दीन के इल्म से भी दुनिया कमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसी चीज़ों से। सब्र और नमाज की बरकत से ज़िंदगी आसान हो जाती है। जब मामला मुश्किल हो, 2 रकत जाए नमाज पर खड़े हो जाए। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी के बारे में कहती कि जब आप पे मामले सख्त होने लगते तो आप नमाज की तरफ भागते। आप कहते मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नवाफिल का एहतमाम कीजिए, एक जायनमाज घर में बिछा रहने दें। अक्सर बावजू रही है, कोई गम, कोई परेशानी, कोई मसला है, क्या करना है, फौरन जाकर 2 नफिल पढ़ लीजिए और कुछ नहीं सजदा कर लीजिए। गौर फिकर के गोशे देखते हैं, आयत 38 से 48 में हक कबूल करने की दावत दी जा रही है। आसमानी कुतुब की तस्दीक करनी है, मामूली कीमत के बदले हक को ना बदलना है ना रद्द करना है। और हक का इजहार और ऐलान बबांगे दोहल कीजिए, खुल के कीजिए, किसी से ना डरिए। अल्लाह सबसे बड़ा है। नेकी का हुक्म करना और इस पे अमल करना है, और सब्र के साथ नमाज से मदद लेनी है, और अपने अंदर खाशेन की खूबियां पैदा करनी है। और ये सब कब आसान होगा? जब हम इसकी नियत करेंगे। बनी इसराइल के ये किस्से आपको मुझे एक किस्म की करेक्टर बिल्डिंग के लिए सिखाए जा रहे हैं, इसलिए अब आगे फिरौन के डूबने का किस्सा है, आयत नंबर 49 से। वही जन जई ना कुमिना अली फिरौन, और जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, जो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। नोट किया आपने? फिरौन पकड़ता था लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ उसको लिया कि मैंने आजमाया। क्या पता चला कि बुरे हुक्मरानों का मुसल्लत किया जाना इंसान के आमाल की सजा है। आमालुकुम ओ मालुकुम बन जाते हैं। फिर इसी तरह वो मौजा जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के साथ निजात मिली, और उसी पानी को फिरौन और उसके साथियों के लिए एक कब्रिस्तान बना दिया, उसका जिक्र है। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया और फिरौनियों को तुम्हारी नजरों के सामने इसमें डुबो दिया, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। लेकिन इसके बावजूद इसके फिर भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। क्या पता चला कि अल्लाह ताला जिंदगी में बार बार मौके देता है, मौत के मुंह से बचा लेता है ताकि नए काम, नई जिंदगी शुरू करो, शुक्र गुजार बनो। कितना बड़ा मौजा था। कभी अपने लिए दुआ करें ना तो अल्लाह से इस तरह किया करें। अल्लाह ताला आपने तो मूसा के लिए समंदर में रास्ता बना दिया था, अल्लाह ताला आपने तो उनके साथ ये मामला किया, तो मेरे लिए भी कर दें, कोई मेरा भी मुश्किल हल कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए थे ना, तो आप जल्दी से नियत कर लें। अल्लाह ताला मूसा 40 रातों के, 30 के लिए गए फिर 40 करके आ गए, ये सूरह अल-आराफ में हम पढ़ेंगे। अल्लाह मुझे भी थोड़ा सा वक्त अकेले में देने वाला बना दे। छोटा सा इतकाफ, छोटी सी एक गोशे में बैठ कर कुरान पढ़ना, और ख़ास तौर पर आपकी ये क्लास जो घर से आप सुन रहे हैं उनके लिए भी ये किस्म का वक्त, उनके लिए अल्लाह से बातचीत का है। तो जब भी कोई आयत पढ़े साथ ही साथ अमल की दुआएं करें, नियत करें। हमारी उस्ताद थी, वो कहती थी जब कोई आयत आए अमल कर लो, छोटी सी छोटी बात में से अगर कोई सदके की आयत है ना तो 58 रुपया 2 रुपये डाल दो, इससे आदत बनेगी। तो आप आज से नियत रखिए कि मैंने इंशाल्लाह हर आयत पे अमल करना है और अपने लिए सुनना है। अब आगे देखिए किताब की बात है। एक किताब आज आप और मैं पढ़ रहे हैं, और एक किताब अल्लाह ने तौरात की सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मौजज़े अता किए। क्या पता चला? किताबों का मकसद नज़ूल हिदायत है। आज हमने कुरान को हिदायत से ज़्यादा बरकतों की और वजीफ़ों की आयत बना दी, आयतें बना दी। हर चीज़ के तो वज़ाइफ है, तो अल्लाह ताला में इससे हिदायत लेने वाला बना दे। मिल रही है हिदायत इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक और वाक़या, अब ये जो वाक़यात है ये ख़ास तौर पे बनी इसराइल की 40 साल हिस्ट्री है, लेकिन चूंकि कुरान पाक में फ़ौरन फ़ौरन आ रहे हैं तो हमें लगता है ये साथ साथ हो रहा है, लेकिन इनमें से अमल के नुक्ते। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू करो, अपने आप को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नज़दीक इसी में है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल की। वो तौबा कबूल करने वाला और रहमो करम करने वाला है। क्या पता चला हम भी तौबा कर लें, कोई गुनाह हुए फौरन तौबा कर लें, और बछड़े ख्वाहिशों के, तमन्नाओं के अंदर की कुछ छुपी हुई खसरतें होती हैं, अल्लाह ताला उनको निकाल दे। और तुम उसे भी याद करो कि तुमने हजरत मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने देख न लें, हर किसी ईमान न लाएंगे, जिस गुस्ताही की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। अल्लाह के मुझसे देखिए, अल्लाह कितना बंदों से प्यार करता है। आप ये देखिए, शिर्क जैसे अमल से भी अल्लाह ताला फौरन बंदे को माफी देके पाक करना चाहता है। आपका मेरा भी यही इरादा और ख्वाहिश होनी चाहिए कि लोग गुनाहों से बचें, नफरत ना कीजिए, लोगों से मोहब्बत कीजिए। हाँ, वो बुराइयां जो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको छुड़वाने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, बनी इसराइल पर जो मोजज़ात थे, अनयूजुअल थिंग्स, क्या, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। मनो सलवा, हाय, उनको मन सलवा मिलता था, हमें नहीं मिलता। एक क्लिक करें आपके घर में 10 प्लेटर आ जाएंगे, क्या ये मनो सलवा नहीं है? होटल में जाने की भी अब जरूरत नहीं, घर बैठे ऐप से फ़ोन पे कह दीजिए ये भेज दो। घरों में अगर मेड्स हैं, घर जाते हैं गरम गरम खाना पका, क्या ये मनोसलवा नहीं है? ये ज़मीन इतना बड़ा दस्तरखान अल्लाह ने हमारे लिए रखा, तो नेमतों की कदर करनी है। फिर तदब्बर और अमल देखेंगे आयत 49-57 तक। पहली बात अमल की क्या, हादसात और आफात से आफियत पर शुक्र अदा करने की याद दहानी है। कभी किसी तूफान से, जलजले से, बारिश से आप बच जाएं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। गाफिल शख्स को याद दहानी करवानी है, सच्ची तौबा करनी है। और मुसलमानों पर अल्लाह ताला का रहम और आसानी क्या है कि बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ़ फरमा देता है। इसी तरह हलाल और पाकीज़ा खाने पर इक्तफा करना है, ताकि हमारी इबादत भी कबूल हों और हमारी दुआएं भी कबूल हों। कुरान पाक से रहनुमाई आयत 49-57 में, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, कैसे, सबको पता है। बंदों पर अल्लाह ताला की रहमत क्या है कि वो गुनाहों पर फौरन नहीं पकड़ता, तौबा की मोहलत देता है। तो लिहाजा अगर कभी पकड़ ना आए किसी गलत काम को करने के बाद, तो फौरन समझ जाइए कि अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है। इसी तरह गुनाह ज्यादा भी हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। इसी तरह इन आयात पे गौर व फिक्र के गोशे क्या है, हक के दुश्मन जरूर रुसवा होंगे, लिख के रख लीजिए। हक की दुश्मनी से बचिए, दुनिया में अल्लाह रुसवाई जरूर करता है ऐसे बंदे की। फिर सच्ची तौबा की कबूलियत की बात है, तो दिल से सच्ची तौबा करते हैं अपने उन गुनाहों को जो जान के किए, जो अनजाने में किए, जो मजबूर होके किए, जो अपनी खुशी से किए, और जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते। फिर इसी तरह रात का वक्त अल्लाह ताला से मनाजात का बेहतरीन वक्त होता है। रात की किसी घड़ी में 10 मिनट, 5 मिनट अल्लाह ताला से जरूर बातें करें। इवन बेवजू भी हैं, सोकर उठे तो रात को आंख खुल जाती है, थोड़ी देर बैठ के बात कर लें। देखिए, अपने बच्चों को, आपके यंग लोग हैं उनको ऐसे ऐसे रगबत दिलाएं, बेटा यही कर लो, यही कर लो। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, हमें पता नहीं किस तरह समझ नहीं आती, गुस्से में बुलाया, चिढ़ के बुलाया, ऐसा ना कीजिए। बेहतरीन तरीके, अल्लाह से रात को दुआ करें अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे। दूसरों के दिल अल्लाह के हाथ में 1 मिनट में जोड़ देगा। फिर इस तरह अपने अपने बछड़े को पहचानी है, और हमारा बछड़ा रब को ना पहचानना और अपने जैसों के सामने आजीर बंदगी करना। मुझे सबसे ज्यादा घबराहट होती है जब लोग बंदों के आगे बड़ी री 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 करते हैं, जी प्लीज ये कर दें। इनको क्या पता इस बंदे के पास है ही कुछ नहीं, सब कुछ तो मालिक के हाथ में। फिर इस तरह नेमतों की याद दहानी इन आयतों में, तो अपनी नेमतों को याद कीजिए। इस वक्त बैठे बैठे सोचिए, सबसे बड़ी नेमत मेरे पास क्या है, जिंदगी, सांस आ रहा है, ईमान है, हिदायत की तलब है, कल क्या हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि इख्तनिम खमसन कबल खम्स, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, तो अपनी इस वक्त को गनीमत जानी है। ये वक्त सो के भी गुजर जाना था, बाजारों में भी जाना था, लेकिन जितना नेकियों का ढेर बंडल लेके साथ जाएंगे वो तो जाया हो जाएगा, और कल का दिन कल हो जाए, आज का दिन तो नहीं है। फिर इसी तरह से क्या पता चला कि नेमत की नाकदरी से दिल सख्त हो जाता है, और नेमतों की फरावानी के बावजूद भी फकर और मोहताजी किस बंदे को आती है जो नाशुकरा होता है। आज आप देखिए इतना कुछ है लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद दिल छोटे हैं, दिल तंग पड़ रहे हैं। आगे बनी इसराइल का वो वाक़या जिसमें इनको बैतुल मक़दस की फतह के बाद उसमें दाखिल होने का हुक्म है, बड़ा खूबसूरत मोड़ था उनकी ज़िंदगी का। 40 साल से इधर उधर भटक रहे थे, अल्लाह ने इनको मतलूबा मेयार पे लाने के लिए इनकी तरबियत की, इनको वादिय ती में रखा, मनसलवा दिया, बादलों का साया किया, हज़रत मूसा इनको सिखाते सिखाते दुनिया से चले गए, फिर यूशे बिन नून की सूरत में एक यूथ, एक यंग लीडर इनके सामने आया, और अल्लाह ने फिर वो मालका नाम की कौम से जिहाद करवाया। याद रखिए बातों से दुश्मन नहीं जाते, उनके साथ कई दफ़ा जाकर दूबदू लड़ाई करनी पड़ती है। अब जब वो वहाँ से हो गए सफारिग तो क्या कहा, और हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में जाओ और जो कुछ जहाँ से चाहो बा फरागत खाओ पियो, और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो, और जुबान से हित्तातुन कहो, हित्तातुन कहते हुए गुजर जाओ, और जुबान से हित्तातुन कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। पता के आदाब है, खुशियों के नेमतों को पाने के आदाब है। आज अकड़ क्यों आ जाती है हमारी चाल में, शादी के दिन शादी का जोड़ा, बड़ी गाड़ी, फलां ये डिग्री आ गई, गर्दन में सरिया आने लगता है। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं जितना ज्यादा तुम झुकोगे मैं तुम्हें उतनी इज्जत दूंगा। किया क्या उन लोगों ने, वही किया जिसकी उम्मीद थी। फिर इन जालिमों ने इस बात को इनसे कही की थी, बदल डाली हमने भी इन जालिमों पर इनके फिस्क और नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब डाल दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपना चश्मा निकाल पहचान लिया, और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद करते ना फिरो। इसको नोट कीजिए, अल्लाह का रिस्क खाइए लेकिन फसाद ना कीजिए। और फसाद क्या है कि अल्लाह के दिए हुए रिस्क से जो ताकत मिले उससे गुनाह करना। कोई एक खुशी का मौका याद कर ले जहाँ 7-8 डिशेज चलती हैं, ड्रिंक्स हैं, कई किस्म के स्वीट्स हैं, 15-16 डिशेस खाकर बाद में क्या किया, उससे पहले क्या करके बैठे, ये ना शुक्रिया। अल्लाह ताला मैं ऐसे फसाद से बचा दे। और जब तुमने कहा है मूसा हमसे ही की किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, हाईलाइट कर ले ये नुक्ता, और ये आयत नंबर 61 है। आज हमारा भी यही मसला है, जायकों के हरीस बन गए, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे। इवन दर्स रख के भी लोग सबसे पहला सवाल ये करते हैं, अच्छा बुलाया तो खिलाऊंगी क्या। मिलाद में जो लोग जाते हैं उनको फिक्र है खिलाने की, बर्थडेज में जाते हैं उनको फिक्र, शादी में खाना खाना खाना। अल्लाह ताला कहते हैं इनका ये जुमला के लन नसबिरला ताम वाहिद बता रहा है कि ये कौम मकसद हयात से दूर हो गई। अफसोस के साथ कहूँगी आज हमारी उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है, जिसको अल्लाह ने पहली वही में कहा था, क्या कहा था बोलिए, इकरा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए अपने रब के नाम से। उस लफ्ज को हमने आज क्या कर दिया, कुल कहने की बजाय कुल खाओ, कुलू खाओ। आज उम्मत मुस्लिमा भी बहुत स्पेंड करती है खाने पे, खाने पे स्पेंड किया जा सकता है एक खास हद में, लेकिन जाया नहीं किया जा सकता। तो लिखिए शादियों के नाम पे जो इतना खाना वेस्ट होता है, ये इसराफ है। इवन अब दर्स में आएंगे और बाद में प्लेटों में खाना होगा, मैं कभी खुश नहीं होंगी। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि इसको देखे तो मेरे दिल पे बोझ आ जाता है, सारी प्लेटें इकट्ठी करा के कई दफा एडवांस खाती हैं, क्या हो गया आपने खाया अभी थोड़ी देर पहले, वो खाना ठीक था सिर्फ आपने प्लेट में डाल के छोड़ दिया, नहीं मुझे नहीं खाना, तो बेकार हो गया। तो प्लीज खाना जाया ना करें, घरों में भी पकाते खाते जाया ना कीजिए, क्योंकि ये नाशुक्री होगी। तो क्या कहा कि हमसे सब्र ना होगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार साग ककड़ी गेहूं मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो, अच्छा शहर में जाओ वहां तुम्हारी चाहत की सब चीजें मिलेंगी, इन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे, ये इनकी नाफरमानी और ज्यादतियों का नतीजा है। चार जरासीम लग गए थे इस कौम को, हिज था, हीलेबाजी थी, न शुक्रापन था, फसादी थे, अकड़ आ गई थी इनके अंदर। तो जरा सा गौर करते हैं आयत 58 से 61 में। पहली बात है कि इसमें चूंकि इनको सिखाया जा रहा है कि ये तरीके हैं जिनसे अल्लाह ताला राजी होता है, अंबिया कराम के तरीकों पे अमल करना आपकी जिंदगी में बरकत लाता है। तो आज इन आयत को पढ़ते हुए किसी सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी कीजिए जो कि अल्लाह के नबी ने बड़ी ताकीद की और छोड़ा नहीं उसको। इस तरह अपनी नमाज की इसलाह के लिए कोई अच्छी किताब या लेक्चर सुनिए, अच्छी किताब पढ़िए या लेक्चर सुनिए, और रमज़ान से पहले अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लें हम सब। इसी तरह अपनी किसी ऐसी नेमत को याद करें जिससे आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग महरूम हैं। कितनी नेमतें दिखेंगे हम, कितना अल्लाह ने आपको मुझे दिया, कभी सोचा आपने? मैंने दो वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिलती और हमारे पास इतना कुछ है। दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कुरान पाक से रहनुमाई, नेकी के मौके अपनी कोताही से ज़ाया नहीं करने, इसको लिखिए। बस लोग कहते हैं तकवा ये कि गुनाहों से बचा जाए, बिल्कुल सही कहते हैं, आधी तारीफ है, बाकी आधी मेरे से ले लीजिए। नेकियों के मौकों को छोड़ना भी तकवा से महरूमी है, गुनाहों को छोड़ना और नेकियों के मौके पर लब्बैक कहना, ये है तकवा की पूरी तारीफ। अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप आगे लब्बैक कह दिए, छोड़ देते बैठ जाते आपको एहसास नहीं। लोग कई दफा नेकियों के वो मौकों को जो हमारी आखिरत बनाने के लिए इतने अहम है उनको जाया कर देते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे वो नजर दे जो मुझे नेकी के मौके को पहचानने और उस पर लब्बैक कहने वाली जुबान भी अता कर दे। इसी तरह बनी इसराइल ने हल में मजीद ज्यादा मांगा तो मजीद की ख्वाहिश पे मौजूदा रिस्क की नाकदरी नहीं करनी, जो है ना उसको एंजॉय कीजिए, जो नहीं है वो भी आ जाएगा। हमारे पास 10 चीजें और 11वीं ना हो बस तो हमें सारी 10 चीजें जो वो बेकार दिखने लगती हैं। जिल्लत मोहताजी और अल्लाह का गजब नाफरमानी की वजह से आता है, यानी जिल्लत और मोहताजी से बचने के लिए नाफरमानियों से परहेज करनी है। इसी तरह गौर व फिक्र के गोशे क्या हैं, कामयाबियों के मौके पर आजजी और इनकसारी का रवैया। अब ये कामयाबी हमारे दौर में क्या है, ग्रेजुएशन पार्टी फर्स्ट आ गए और मेरा बच्चा हाफिज बन गया, शादी मंगनी, हम ऐसे मौके पे आजिज बनते हैं या बहुत अकड़ अकड़ कर दिखाते हैं। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, अल्लाह आपको जितना फल लगाता जाए दरख्त की तरह उतने झुकते जाइए। फिर इसी तरह फतेह के मौके पर नेमत का शुक्र भी करना और मुनिम को राजी रखना। पता है मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी जब जा रहे थे तो आपकी दाढ़ी आपके कुजावे से टकरा रही थी, यानी इतना आप झुके हुए थे। तो नेमतों के मौके पर हाय हर्रा नहीं, हुर्रा नहीं, शादियों का मौका भी तो नेमत है ना, बच्चों की कामयाबियाँ खुशी की बात है, उस पे और उनको अल्लाह के करीब करे। बेटा जाओ सजदे शुक्र करके आओ, जाओ कुछ सदका करके आओ। ऐसी अकड़ दिखानी, इसका एक्सपोज करना, फिर अपनी प्रोफाइल पे तस्वीरें लगानी, इससे बचने की जरूरत है। इस तरह नेमतों से बेजारी हिर्स और लालच का जरिया बनती है। आप याद रखिएगा कि जिसको वाकई अल्लाह की दी हुई नेमत से प्यार हुआ ना, वो कभी भी आगे से मजीद हिर्स और लालच की तरफ नहीं जाएगा। फिर एक गुना दूसरे गुना का रास्ता हमवार करता है, तो बेहतर है निप दाइवल इन दी बट, पहला गुना ही छोड़ दीजिए ताकि दूसरा खत्म हो। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो एक सीढ़ी से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, अगर बीच में से एक सीढ़ी निकाल दी जाए तो आप आगे नहीं चढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप और मैं गुनाहों की दलदल में भी फंसते जाते हैं, अल्लाह ताला बचा के रखे। इसी तरह सगीरा और कबीरा गुनाहों से, यानी सगीरा गुनाहों से कबीरा गुनाह जन्म देते हैं। लोग कहते क्या है छोटा सा गुनाह, पहली बात है छोटा गुनाह बार बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और दूसरी बात किसी ने कहा कि कोई गुनाह छोटा नहीं होता क्योंकि जिसकी नाफरमानी करते हो वो अकबर है। तो हर गुनाह कबीरा गुनाह है। इसी तरह अपने रिस्क को कम ना समझिए, अगर वाकई आपको कम लगता है तो सलीके से इस्तेमाल कीजिए। पाकीज़ा हलाल चीज़ों की बजाय हराम अदना हराम चीज़ों से बचना है, यानी ज़िंदगी साफ सुथरी हो, बेहतरीन पाक साफ ज़िंदगी हो। इसके बाद आयत 62 बहुत अहम है, आज बहुत सारे लोग इसको मिस कोट करते हैं। सारे मज़ाहिब को जमा कर कर एक मज़हब बना दो, इसी को मुख्तलिफ अदवार में पेश किया गया। आज 36 में से कई दफ़ा जो लेटर्स आते हैं ना उसमें यह आयत लिखी होती है। क्या है आइए सुनिए, मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे और इनके अजर इनके रब के पास हैं और वो क्या है कि इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमजदा होंगे। इसको नोट कीजिएगा, टेंशन फ्री लाइफ सिर्फ उसकी है जो ईमान लाने के बाद अमल सवाले करेगा। तो तदब्बुर वाला अमल, और उसके लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अल्लाह के नबी को रोल मॉडल बनाते जाएं, खुद बहुत गुड डीड्स राइटियस डीड्स में बदलते जाएंगे। फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत, जब अल्लाह ने उनको भेजा कोहे तूर पे जाएं, कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, थोड़ा अपना स्पिरिचुअल लेवल बुलंद करें, तो वहाँ जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को आने को दिल ही ना किया। 10 दिन और हो गए, 40 दिन हो गए, पीछे कौम ने बछड़ा बना लिया। अल्लाह ने वही के जरिए मूसा को खबर दी, जब मूसा को गुस्सा आया, वापस आए, तख्तियाँ हाथ से फेंक दी, टूट गई, तख्तियाँ उठाई, कौम जरा सीधी हुई तो कहा चलो भाई मानो, कहते नहीं हम खुद जाकर देखेंगे कि अल्लाह ने तुम्हें क्या वादा दिया, और वहां जाकर इनकार कर रहे हैं। फिर कोहे तूर को इनके ऊपर खड़ा किया गया, इसी का तस्कर है, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर लाकर खड़ा कर दिया और कहा जो हमने तुम्हें दिया इसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच सको, लेकिन तुम इसके बाद भी फिर गए। फिर अगर अल्लाह तआला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। इससे पता चलता है कि अल्लाह की रहमत है कि हमें कई दफ़ा वो होने वाले नुकसान से बचा लेता है, कभी हादसा होते हुए नहीं बच जाता, चीज़ गिरते गिरते पकड़ लेते हैं आप। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का भी इल्म है जो तुमसे पहले हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने ये भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ, और इसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाजो नसीहत का हीला साजी। मछलियाँ पकड़ी, बहाना किया, अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल दी। ये वाक़या डिटेल के साथ आगे आएगा सूरत अल अराफ में, लेकिन यहाँ सीधी सी बात है कि बहाने करके धोखे देकर अल्लाह ताला के साथ हलाल हराम के मामले ना कीजिए। इन्होंने अल्लाह के हुक्म की शक्ल बदली, अल्लाह ने इनकी शक्लें बदल दी।